गंगा, यमुना और सरस्वती अध्यात्म की यही तीन धाराएं हैं। गायत्री के तीन चरण। मित्रों,
गायत्री के तीन चरण हैं, तीन धाराएं हैं।
यही त्रिवेणी संगम की गंगा, यमुना और सरस्वती नामक तीन धाराएं हैं। बस यही सारे के सारे अध्यात्म का सार है।
गंगा यही है, दूध यही है, शक्कर यही है और अनाज यही है। इन तीनों चीजों की मिठाइयां बनी पड़ी हैं। अगर आप सारे धर्मशास्त्रों को पढ़ लें तो भी अच्छा है।
अगर धर्मशास्त्र पढ़ने में न आए, सत्संग आपके सुनने में न आए, किसी महात्मा के पास सत्संग में जाने के लिए फुर्सत न मिले, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की आपको फुर्सत न मिले, तो केवल इन तीन सिद्धांतों को जान लेना, समझ लेना। इनको अगर आपने जान लिया तो सारे का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा।
सारे वेदों के पाठों का सार समझ में आ जाएगा और सारे के सारे संतों का और सारे के सारे ऋषियों का जो कुछ भी शिक्षण और प्रशिक्षण है उसका मूलभूत समस्त सार आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आप इन तीन बातों को जान लें तब।
मित्रों, तीसरी एक और बात रह गई। तीसरी बात क्या रह गई?
तीसरी बात यह रह गई कि इंसान के पास जो संपदाएं हैं वे एक अमानत के रूप में हैं। भगवान सबको प्यार करता है, भगवान के बेटे बेटी सभी हैं, कीड़े मकोड़े भी उसी के बेटे बेटी हैं और पशु पक्षी भी उसी के बेटी बेटे हैं। 84 लाख योनियों के अलावा इंसान को जो कुछ भी अतिरिक्त रूप में विविधताओं से परिपूर्ण क्षमताएं मिली हुई हैं वे केवल एक अमानत के रूप में मिली हुई हैं। वे इसलिए मिली हुई हैं कि इस दुनिया में खुशहाली पैदा करें, इस दुनिया में शांति पैदा करें और भगवान के सहायक इंजीनियर के रूप में, उसके मैनेजर के रूप में, उसके मिनिस्टर के रूप में दुनिया में सुख और शांति लाने के लिए भगवान की मदद करें। इसके लिए हमको बुद्धि मिली हुई है, अक्ल मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है जो कि दूसरे प्राणियों के पास नहीं है।
वह खालिस अमानत है।
जिस तरह बैंक के खजांची के पास अमानत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे पास भी अमानत है। भगवान की अमानत है इंसान की संपदाएं।
मित्रों,
यह अमानत हमको सिर्फ इसलिए मिली हुई है कि खाने और पहनने के अलावा जो भी हमारी बुद्धि का हिस्सा बाकी बच जाता है, जो भी हमारे प्रभाव का हिस्सा बाकी बच जाता है, जो भी हमारे पैसे का हिस्सा बाकी बच जाता है, उन सारी की सारी चीजों को दुनिया की खुशहाली के लिए, इस दुनिया में शांति लाने के लिए, इस दुनिया में सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहिए। हमको पेड़ों से नसीहत लेनी चाहिए जो कि हमको रोजाना सिखाते हैं कि हमने अपने पत्ते पैदा किए लेकिन खुद उनको खाया नहीं, खुद इस्तेमाल नहीं किया, पत्तों को जमीन पर गिरा दिया और वे खाद बनकर जमीन में चले गए, जमीन में मिल गए। पेड़ पौधों से, वृक्षों से हमको यह सीखना चाहिए कि उन्होंने अपना वैभव बढ़ाया लेकिन स्वयं उससे कोई लाभ नहीं उठाया।
जो भी उसके समीप आए, अंदर आए या नीचे आए, सबके सब लाभान्वित होते चले गए। जानवर आए और उसके नीचे बैठते चले गए।
चिड़ियां डालियों पर बैठती चली गईं।
उनके भीतर चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए।
कीड़ों ने अपने रहने की जगह बनाई।
जानवर उसके नीचे बैठते चले गए। इंसानों ने भी फायदा उठाया।
उसके फूल लोगों के काम आए, उसके फल दूसरे लोगों के लिए काम आए। पेड़ स्वयं के लिए नहीं जिया, अतः इंसान को कम से कम पेड़ों के बराबर तो होना ही चाहिए।
मित्रों, भेड़ों से हमको नसीहत लेनी चाहिए।
भेड़ अपने वदन पर ऊन पैदा करती है, ऊन पैदा करने के बाद में वह उसे उन लोगों को मुहैया कराती है जिन लोगों को जाड़े में कंबलों की जरूरत है, गर्म कपड़ों की जरूरत है। अपने वदन पर से वह बार बार ऊन कटवाती जाती है और भगवान उस ऊन का मुआवजा बार बार देता हुआ चला जाता है। जितनी बार ऊन काटी जाती है उतनी ही बार नई ऊन पैदा होती चली जाती है।
आदमी को कम से कम भेड़ जैसा तो होना ही चाहिए, उसे रीछ जैसा नहीं होना चाहिए।
रीछ के वदन के ऊपर भी भगवान ने ऊन दी थी लेकिन उसने कहा कि यह ऊन मेरे लिए है, इसका उपयोग मैं करूंगा और मेरा बेटा करेगा,
मैं खाऊंगा और मेरा बेटा खाएगा, तीसरे प्राणी को नहीं खाने दूंगा,
यह सब मेरे लिए है, मैं किसी को भी एक बाल देने के लिए तैयार नहीं हूँ।
रीछ ने अपनी ऊन किसी को नहीं दी।
जो भी मांगने के लिए आया उसको काटने के लिए दौड़ा,
फलस्वरूप कुदरत ने उसको ऊन देना बंद कर दिया।
जितनी ऊन भगवान से लेकर के आया था जन्म के समय से अंतिम समय तक एक अंश भी अधिक प्रकृति ने नहीं दी। भेड़ जो थी वह हर बार ऊन देती चली गई और प्रकृति भी उसे हर बार देती चली गई। संचयी न हो, दान देना सीखें।
मित्रों, आपको भेड़ के बराबर समझदार तो होना ही चाहिए।
आपने MA पास कर लिया है, जागीरदार हो गए, कलेक्टर हो गए, परंतु आपको भेड़ के बराबर भी अक्ल नहीं आई, आपको पेड़ों वृक्षों के बराबर भी अक्ल नहीं आई, आपको तालाब के बराबर भी अक्ल नहीं आई। जो नदियां बहती गईं और अपने पानी को लेती गईं और पानी को खेतों में बिखेरती हुई चली गईं और बांकती हुई चली गईं, उन नदियों को हिमालय से पानी मिलता हुआ चला गया। स्रोतों से पानी मिलता हुआ चला गया, झरनों से पानी मिलता चला गया, लेकिन जो तालाब रुककर सीमाबद्ध हो गए थे और जिन्होंने यह कहा कि यह पानी हमारा है, हमारे खर्च करने के लिए है,
हमारे अलावा किसी को भी इस पानी का फायदा नहीं मिलना चाहिए,
उनका पानी सड़ गया, सिकुड़ गया और वे जोहर सूख गए। वे कीड़ों से भर गए और उन जोहरों में गंदगी पैदा हो गई और बदबू पैदा हो गई। जो उदार है वही इंसान है।
मित्रों,
हमारी अक्ल उन नदियों और झरनों के बराबर तो होनी ही चाहिए जो सबके काम आते हैं। इंसानों की अक्ल उन बादलों के बराबर तो होनी ही चाहिए जो बराबर अपना पानी बरसाते रहते हैं। पानी बरसाने के बाद में नदियां पानी को समुद्र में ले जाती हैं।
समुद्र फिर उन बादलों को देता है।
बादल फिर उन रास्तों से पानी बांटते हुए चले जाते हैं, लेकिन बादलों के पास पानी की कमी नहीं होती है। बादलों ने अगर अपना पानी रोक करके रखा होता और यह कहा होता कि यह पानी हमारे लिए है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे,
फिर कैसे वृद्धि होती? फिर वर्षा नहीं हो सकती थी, फिर मुसीबत आ जाती और बादल बदनाम हो जाते और संसार में तबाही आ जाती। इंसान को बादलों के बराबर तो अक्ल रखनी चाहिए। मित्रों,
हर आदमी से हमको यह कहना चाहिए कि इंसान उसे कहते हैं जो उदार होता है। इंसान वह होता है जो दूसरे के दुखों में अपने दैख की अनुभूति करता है। इंसान उसे कहते हैं जो अपने सुखों को अकेला बैठकर नहीं खाता, वरन अपने सुखों को बांटकर और दूसरों के दुखों को बंटाकर खाता है। उसकी तबीयत ऐसी उदार होती है, वह आदमी पूर्ण कहलाता है, वह आदमी तपस्वी कहलाता है, वह आदमी योगी कहलाता है,
वह आदमी संत कहलाता है। और जिसके अंदर उदारता का मादा पैदा न हो सका, जिसके अंदर संतपन का मादा पैदा न हो सका, जिसके अंदर अपनी तबीयत को चौड़ा करने का मादा पैदा न हो सका, जिसके अंतस में अंतर में करुणा का मादा पैदा न हो सका, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि यह आदमी अध्यात्मवादी है?
फिर हम कैसे कहेंगे कि यह आदमी भगवान का भजन करने वाला है और रामायण पढ़ने वाला है, गीता पढ़ने वाला है?
रामायण पढ़ने वाले को, गीता पढ़ने वाले को और भागवत पढ़ने वाले को उदार तो होना ही चाहिए, तबीयत तो उसकी चौड़ी होनी ही चाहिए,
दूसरों के सुख और सुविधा को बढ़ाने के लिए उसके अंतःकरण में फुरफुरी तो आनी ही चाहिए,
आध्यात्मिकता का यह लाभ तो मिलना ही चाहिए, धर्म की सच्ची व्याख्या। मित्रों,
यह क्या कहलाएगा? यह वह कहलाएगा जिसको हम धर्म कहते हैं।
हर जगह जहां कहीं भी आप जाएं, जहां कहीं भी आपको आधा घंटा बोलने का मौका मिले, प्रवचन करने का मौका मिले, आप तीनों सिद्धांतों को समझाना।
मैंने आपको संक्षेप में समझाया, सारभूत समझाया। इसको आप चाहे जितना विस्तार कर सकते हैं और बहुत विस्तार से बता सकते हैं। कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा हमको यह तीन सिद्धांत मनुष्य के हृदय में स्थापित करने हैं।
यह तीन सिद्धांत अगर हम स्थापित करा सकें, तो इन्हीं को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहेंगे।
अगर आपने इन तीनों सिद्धांतों को स्थापित करा लिया, तो हम इन्हीं को गायत्री कहेंगे, इन्हीं को सरस्वती कहेंगे, इन्हीं को काली कहेंगे और इन्हीं को लक्ष्मी भी कहेंगे।
मित्रों,
यही तीन सिद्धांत हैं, यही तीन धाराएं हैं जिनको हम गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं।
इन्हीं तीन धाराओं पर अगर आपको आधे घंटे का प्रवचन करने का मौका मिले और लोग जिज्ञासा व्यक्त करें कि गुरुजी कुछ बात कहिए,
आचार्य जी ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, आचार्य जी ने हमारे लिए क्या कहलवा करके भेजा है, तो आप इन्हीं तीनों बातों के बारे में बताना और उनसे कहना कि आप इन्हें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, तो आप संत हो सकते हैं भले ही आप गृहस्थ हैं, आप योगी हो सकते हैं भले ही आप सामान्य कपड़े पहने हों और नौकरी करते हों, आप तपस्वी हो सकते हैं भले ही आप बिना पढ़े लिखे आदमी हों और आप खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हों। प्राचीन काल के संत ऋषि इसी तरीके से रहते और तपो में जीवन जीते थे।
संत रैदास को ही देख लीजिए, तुलाधार वैश्य को देख लीजिए,
सारे के सारे आदमी इसी तरीके के थे, जो अपना पेट पालने के लिए, गुजारा करने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे।
मित्रों, कबीरदास सारी जिंदगी जुलाहे का काम करते रहे, खड्डी बुनते रहे और सूत काटते रहे,
सूत बुनते रहे और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोटी कमाते रहे। क्या संत कबीर तपस्वी नहीं थे?
हाँ, औरों की अपेक्षा ज्यादा तपस्वी थे।
क्या रैदास तपस्वी नहीं थे?
हाँ, तपस्वी थे, वे जिंदगी भर चमड़े का काम करते रहे,
अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए और रोटी कमाने के लिए ईमानदारी से जिंदगी भर वही काम करते रहे।
कौन सा चमड़े का काम?
और भी कितने ही संत हुए हैं जो जिस दिन से पैदा हुए किसानगिरी का काम किया और जिस दिन उनका शरीर साथ छोड़ गया उस दिन तक बराबर खेती बाड़ी करते रहे और किसानगिरी का काम करते रहे। कैसे बने संत?
कैसे बने आध्यात्मिक? मित्रों,
क्या हम संत नहीं हो सकते? हाँ, हम संत हो सकते हैं, हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम तपस्वी हो सकते हैं,
अध्यात्मवादी हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं।
कब हो सकते हैं?
जबकि हम बहिरंग क्रियाकलापों तक अपनी आध्यात्मिकता और अपनी धार्मिकता को और अपनी आस्तिकता को सीमित रखने की अपेक्षा अपने मन को, अपने हृदय को और अपने अंतःकरण को रंगने की कोशिश करें। बाहर के कपड़े चाहे रंगे जाएं, चाहे नहीं रंगे जाएं, पर उन्हें धुला तो होना ही चाहिए और रंगा तो होना ही चाहिए।
मन की धुलाई और मन की रंगाई, इसी का नाम आध्यात्मिकता है। हमारे मिशन ने इसके लिए 3 प्रयोग जन साधारण के सामने प्रस्तुत करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों को 3 बातें ही सिखाते हैं। हमारी सारी की सारी शिक्षाओं के और कथाओं के, योगों के, व्याख्यानों के और हमारे क्रियाकलापों के 3 उद्देश्य हैं। चौथा और कोई उद्देश्य नहीं है।
युग निर्माण मिशन का पहला उद्देश्य आस्तिकता। मित्रों,
एक उद्देश्य यह है कि हम आस्तिकवाद की स्थापना करना चाहते हैं।
आस्तिकवाद का अर्थ है भगवान का विश्वास नंबर, भगवान की पूजा नंबर 2। पूजा नंबर 1 नहीं है, वरन भगवान का विश्वास नंबर 1 है। भगवान का विश्वास इसका प्राण है।
भगवान का विश्वास न हो और भगवान की पूजा करते रहें तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। चलिए, मैं यह भी कहने को तैयार हूँ कि आप पूजा नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। भगवान का विश्वास मूल है और भगवान की पूजा गौण है। आप भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करने के लिए मैं किससे मना करता हूँ? पूजा करने से मेरा कोई विरोध नहीं है।
पूजा का मैं समर्थक हूँ और पूजा की मैं शिक्षा देने वाला हूँ।
लेकिन अगर आदमी यह मानना शुरू करेगा कि हम पूजा करते हैं तो भगवान के ऊपर हमारा अधिकार हो गया, तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति यह कहेगा कि हमने तो भगवान की भक्ति कर ली लेकिन मन की सफाई नहीं करते हैं, तो क्या हुआ? भगवान के उद्देश्यों और आदर्शों पर नहीं चलते हैं तो क्या हुआ? अगर कोई यह कहने लगा तो मैं उसे गलतफहमी में पड़ा हुआ आदमी कहने लगूंगा।
मित्रों,
आप लोग हर एक से कहना कि हमारा मिशन आस्तिकवाद की स्थापना करने चला है। लोग जब यह पूछे कि अध्यात्म तो सत्संग को कहते हैं,
अध्यात्म तो रामायण पढ़ने को कहते हैं,
अध्यात्म तो उपवास करने को कहते हैं, तब आप कहना कि अध्यात्म इस चीज का नाम नहीं है।
यह अध्यात्म का कलेवर है।
यह अध्यात्म की शाखाएं हैं। ये अध्यात्म के वाहन हैं। ये अध्यात्म की सवारियां हैं। लेकिन असली अध्यात्म वह है जिसमें आदमी अपनी सारी की सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाने को तैयार होता है, अपनी सफाई को सबसे बड़ा आवश्यक काम मानता है और यह मानता है कि हमको जो कुछ भी मिलने वाला है, जो कुछ भी हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, वह तब होने वाला है जब हम अपने आप को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाना शुरू कर दें।
युग निर्माण मिशन का दूसरा उद्देश्य आध्यात्मिकता। मित्रों,
अपने ऊपर विश्वास करने का नाम ही आत्मबोध है।
आध्यात्मिकता उसी का नाम है।
आत्मचिंतन उसी का नाम है। वेदांत उसी का नाम है।
सोमस्मि अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, यह सारे के सारे वाक्य इसलिए बताए गए हैं कि लोगों बाहर की तलाश करना बंद करो।
जो कुछ भी आपको तलाश करना है, भीतर तलाश करो। अपने भीतर की ओर देखो। आपको भगवान को तलाश करना है तो बाहर ढूंढना बंद कर दो और अपने भीतर तलाश करो। आपको महान बनना है, दिव्य संपत्तियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो बाहर मरघट में जा करके आपको मुर्दे के ऊपर चावल पकाना और खोपड़ी में पानी पीना बंद करना पड़ेगा।
अपने भीतर सिद्धियां तलाश कीजिए।
सिद्धियों के भंडार आपके भीतर भरे पड़े हैं। आपको यह शिक्षण करना है कि अध्यात्मवाद का मतलब है अपने ऊपर निर्भर हो जाना, अपने आप की सफाई करना, अपने को श्रेष्ठ बनाना,
अपने आप को प्रखर, पवित्र, ओजस्वी एवं तेजस्वी, मनस्वी बनाना ही अध्यात्म का मूलभूत उद्देश्य है। युग निर्माण मिशन का तीसरा उद्देश्य धार्मिकता। मित्रों, हमारे मिशन का यह उद्देश्य नंबर 2 है।
आप हर जगह कहना कि आदमी को हम उदार बनाना चाहते हैं,
आदमी को हम हृदयवान बनाना चाहते हैं,
आदमी के भीतर हम सेवा भक्ति बढ़ाना चाहते हैं,
हम आदमी को सहृदय बनाना चाहते हैं,
हम आदमी को समाजनिष्ठ बनाना चाहते हैं, जिससे कि वह एकाकी जीवन जीने की अपेक्षा अपने ही सुख और सुविधाओं की उन्नति करने की अपेक्षा परदुख कातर होना चाहिए। आदमी दूसरों के डहकों में सहायक होना सीखे, संसार में शांति लाने के लिए अपना पसीना बहाना सीखे और मेहनत को बढ़ाना सीखे, सत्कारियों के लिए कष्ट उठाना सीखे। इस चीज का क्या नाम है?
इस चीज का नाम है धार्मिकता, कर्तव्यप्रायणता।
हम लोग धार्मिकता का विस्तार करने के लिए चले हैं। हम लोग आस्तिकता की स्थापना करने के लिए चले हैं।
हम ईश्वर का विश्वास और ईश्वर की भक्ति का संवर्धन करने चले हैं।
बस यही 3 चीजें थीं जो हमारे मिशन ने, संस्था के संस्थापकों ने वेदों का अनुवाद करके, पुराणों का अनुवाद करके, अन्य ग्रंथों का अनुवाद करके, संत और महात्माओं का सत्संग करके अपना चिंतन और मनन करके मक्खन के रूप में 3 रत्न निकाले हैं।
मित्रों, समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकाले गए थे।
धर्म के और संस्कृति के सारे कलेवर, जिसमें योगाभ्यास भी शामिल है, तप करने की विधियां भी शामिल हैं, उपासना करने के क्रियाकृत्य भी शामिल हैं, धर्मग्रंथों के पाठ भी शामिल हैं, संत महात्माओं के सत्संग और उपासना भी शामिल हैं, इन सबका सार यही 3 है। ये तीनों चीजें जानने की नहीं है, वरन मानने से संबंध रखती हैं। अगर आप इन चीजों को जान भी लें तो आपका कोई फायदा नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? अगर इसे आप जान लें तो इससे कोई फायदा नहीं है। अध्यात्म क्या है? सारे के सारे उपनिषदों के व्याख्यान आप याद कर लें तो भी इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। भगवान के बारे में, भगवान के 24 अवतारों के बारे में जो कथाएं हैं उन्हें आप जान लें, सुन लें, और जो 24 अवतार हुए हैं उनकी शक्लों को आप देख लें, उनके सहस्रों क्रियाकलापों को आप याद कर लें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
आपको फायदा तब होगा जबकि इस सारी की सारी जानकारी को जीवन में क्रियान्वित करना शुरू कर दें। इन जानकारियों को जब आप क्रियान्वित करेंगे, क्रियारूप में करेंगे, तो उसका फायदा उठा लेंगे, उसका लाभ उठा लेंगे। मित्रों, आप च्यवनप्राश लें।
इसमें क्या क्या दवाइयाँ मिलती हैं, क्या क्या दवाइयाँ डाली जाती हैं और कैसे बनाई जाती हैं?
यह जानकारी अगर आपको हो जाए तो क्या कोई फायदा आपको मिल सकता है? च्यवनप्राश का 1 डिब्बा आप ले आएं और ऊपर रख दें, उसकी पूजा कर लें, आरती उतार लें, तो उस च्यवनप्राश का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। च्यवनप्राश का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसको खाना शुरू करेंगे,
उसे हजम करना शुरू करेंगे और खून का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे।
आस्तिकता का फायदा उसी समय है जब हम आस्तिकता की प्रेरणा को अपने जीवन में क्रियान्वित करना शुरू करेंगे। अध्यात्म का लाभ केवल उसी को मिलने वाला है जो अध्यात्म को अपने जीवन में क्रियान्वित करने के लिए कदम बढ़ाएगा।
धार्मिकता का फायदा उसी को मिलने वाला है जो समाज परायण होना सीखे और लोकमंगल के लिए अपने कर्तव्यों और फर्जों के लिए कदम बढ़ाना सीखे।
मित्रों,
यही वह सिद्धांत है जिसमें मनुष्य जाति का सुख और शांति टिकी हुई है, जिसमें कि व्यक्ति के लक्ष्य का पूरा होना टिका हुआ है, जिसमें कि संसार की समृद्धि और शांति टिकी हुई है। इसलिए आप लोगों से कहना कि हम आपको 3 बातें बताने के लिए आए हैं। भारतीय धर्मग्रंथों में यह लिखा हुआ है, हर धर्मशास्त्र में यही है और अध्यात्म ग्रंथों में भी यही है, ऋषियों की प्रेरणाओं और सत्संगों में यही है, चमत्कारों की जड़ यही है, सिद्धियों की जड़ यही है,
ईश्वर की प्राप्ति का आधार यही है, जो कुछ भी श्रेष्ठतम है वह यही है। सारे का सारा अध्यात्म और धर्म जो दिखाई पड़ता है वह 3 तरह का है।
हलवाई की 3 चीजों के तरीके से उसका सार रूप यही है। इस तरीके से आप आधा घंटे, 1 घंटे के भीतर, 15 मिनट के भीतर, जहां कहीं भी आपको मौका मिले और एक ही व्याख्यान करने का मौका मिले और आपको यह मालूम पड़े कि अब दोबारा हम यहां नहीं आ सकते, तो आप मिशन का सार, मिशन की निष्ठाएं और आस्थाएं, मिशन की क्रियापद्धति और मिशन के क्रियाकलाप और योजना का सार बता करके चले जाना।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।